हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इसलिए अमन जल्दी से आगे बढ़ा, किंतु तभी अचानक उसने देखा, उसके सामने कम से कम हजारों पिशाच खड़े थे। लेकिन अमन अभी उन पिशाचों से झगड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी तारा के पास पहुंचना था। वो तारा के पास जाकर उसे राक्षस से बचाना चाहता था, किंतु इतने सारे पिशाचों को अपने सामने देखकर अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से इन पिशाचों का मुकाबला करे। अभी पीछे उसे दो तीन पिशाच मिले थे, उनसे झगड़ने में ही उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ तो हजारों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इसलिए अमन जल्दी से आगे बढ़ा, किंतु तभी अचानक उसने देखा, उसके सामने कम से कम हजारों पिशाच खड़े थे। लेकिन अमन अभी उन पिशाचों से झगड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी तारा के पास पहुंचना था। वो तारा के पास जाकर उसे राक्षस से बचाना चाहता था, किंतु इतने सारे पिशाचों को अपने सामने देखकर अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से इन पिशाचों का मुकाबला करे। अभी पीछे उसे दो तीन पिशाच मिले थे, उनसे झगड़ने में ही उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ तो हजारों से भी ज्यादा पिशाच खड़े हुए थे, तो अमन इनका मुकाबला कैसे कर सकता था? ऊपर से उसकी जिन्नातों की शक्तियाँ वहाँ बहुत कम काम कर रही थीं। अमन को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तब अमन ने सोचा कि पीछे हटना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था, उसे आगे ही जाना था। इसलिए अमन ने अपना इरादा कड़ा कर लिया कि वो अभी और इसी वक्त इन पिशाचों का खात्मा कर देगा। ये सोचते हुए जैसे ही वो उन पिशाचों से झगड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो अमन ये देखकर हैरान हो गया कि जितने भी पिशाच वहाँ खड़े थे, वे सभी पिशाच अमन को देखकर मुस्कुराने लगे थे। पिशाचों को इस तरह से अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखकर अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पिशाच इस तरह से क्यों हंस रहे थे। क्या वे उस पर हाथ उठाने वाले थे या नहीं, या वे उसे मारने का कोई अलग ही प्लान बना रहे थे? ये सोचते हुए जैसे जैसे अमन उनके करीब जा रहा था, वे पिशाच हंसते हुए आगे हट रहे थे, और तुरंत सभी पिशाचों ने अमन के लिए अपने आप ही रास्ता छोड़ दिया था। अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके दिलो दिमाग में सिर्फ अपनी बीवी तारा को ढूंढने का जुनून सवार था। उसके पास ये सब सोचने का समय नहीं था कि आखिरकार ये इतने सारे पिशाच उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने अमन पर किसी तरह का कोई हमला क्यों नहीं किया है। ये सोचते हुए अमन जल्दी से वहां से आगे निकल गया, और जैसे ही अमन आगे बढ़ा, उसने देखा। अमन इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर उन सभी पिशाचों ने उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया था और वे सभी उसे देखकर इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या बात हो सकती थी? अमन इस वक्त इन सारी चीज़ों के बारे में गौर करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे सबसे पहले सिर्फ अपनी प्यारी बीवी तारा को ढूंढना था, क्योंकि उसकी प्यारी बीवी तारा की जान और इज्जत दोनों ही खतरे में थी। अमन जल्दी से अब आगे बढ़ने लगा था, और वो ये देखकर हैरान हो गया था कि रास्ते में उसे कितने ही सारे पिशाच मिले थे, जो कि अलग अलग तरह के रूप में थे, लेकिन किसी ने भी उस पर किसी तरह का कोई आक्रमण करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात अमन को काफ़ी हैरान कर रही थी। अमन के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा था कि आखिरकार ये पिशाच उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि जहाँ तक उसने पिशाचों के जंगल के बारे में सुना था, उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि पिशाच कभी भी जंगल में आए हुए युगों को जिंदा नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कोई राक्षस हो, इंसान हो या कोई और। इंसानों को तो वे एक पल भर में ही मिटाकर गायब कर देते हैं, तो फिर ये? लेकिन ये क्या, कोई भी अमन को कुछ नहीं कह रहा था? कहीं ना कहीं अमन को लगने लगा था कि जो जादुई पानी उसके दादा महाराज ने उसे दिया है, शायद इसी वजह से उस पर कोई किसी तरह का आक्रमण नहीं कर रहा है। ये सोचकर मुस्कुराता हुआ अमन जल्दी से आगे बढ़ने लगा था, और जल्दी ही वो उस गुफा के सामने खड़ा हुआ था जिस गुफा में उस वक्त तारा मौजूद थी। तारा के वहां होने का एहसास उसे शिद्दत से होने लगा था, और उसे समझ आने लगा कि उसकी प्यारी बीवी कहीं और नहीं बल्कि इसी गुफा के अंदर मौजूद है। तो अमन ने जैसे ही अपना पहला कदम उस गुफा के अंदर बढ़ाया, तभी अचानक उसे एक जोरदार करंट लगा और वो दूर जाकर गिर गया। अमन का हैरानी और गुस्से से बुरा हाल हो गया था। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर वो इस तरह से मुसीबत का सामना कैसे करे? वहीं दूसरी ओर तारा अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, और उसके पेट में पल रहा जिन्नातों का वंशज भी पूरी तरह से बेहोश हो गया था। तो अब विक्रांत रंधावा एक बड़ी ही हवस भरी मुस्कुराहट के साथ तारा परी की ओर बढ़ने लगा था, और वो तारा को अपनी नज़रों से हटाकर गुफा के ही एक दूसरे हिस्से में ले आया था। वहां पर उसने अपनी जादुई शक्तियों से एक बड़ा ही खूबसूरत शानदार बिस्तर तैयार किया था, क्योंकि वो तारा के साथ पूरी तरह से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। उसने बिस्तर को बड़े ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सजाया था, और तारा को उस बिस्तर के बीचों बीच उसने लिटा दिया था। और खुद उसके पास जाकर पहले तो उसे ऊपर से देखने लगा और धीरे धीरे एक एक करके उसने तारा परी के जिस्म से उसके कपड़े अलग करना शुरू कर दिया था। विक्रांत रंधावा हर हाल में उस वक्त तारा को पाना चाहता था और कहीं ना कहीं उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि तारा ये सब देखने के लिए उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त बेहोश की हालत में थी। विक्रांत ने तारा परी को अपनी जादुई शक्ति के द्वारा एक खूबसूरत साड़ी पहनाई थी जो कि एकदम सफ़ेद रंग की थी, जिस पर लाल रंग का वर्क था, जिसमें तारा परी बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। विक्रांत रंधावा ने जादुई शक्ति के द्वारा तारा परी को साड़ी पहनाई थी ताकि वो तारा के साथ बिल्कुल परी वाले कपड़ों में रिश्ता बना सके, और उसी एहसास के साथ वो इस वक्त तारा परी के साथ रिश्ता बनाने वाला था। ये सोचते हुए विक्रांत रंधावा ने धीरे धीरे उसकी साड़ी को उसके जिस्म से अलग करना शुरू कर दिया था। अब तारा केवल एक सफ़ेद रंग के छोटे छोटे दो कपड़ों में उसके सामने थीं, जो उसके शरीर के केवल निजी अंगों को ढंक रहे थे। तभी विक्रांत ने धीरे धीरे तारा का हाथ पकड़कर उसे किस करना शुरू कर दिया था। तारा परी के जिस्म पर उस वक्त केवल नाम मात्र के लिए दो ही कपड़े थे। उसके बाद उसने उसे फूलों से भरे बिस्तर के बीचों बीच लिटाकर उसने तारा परी के ऊपर कुछ फूलों की बरसात करनी शुरू कर दी थी। फूलों के बीच में लेटी हुई तारा परी बड़ी खूबसूरत लग रही थी और अब विक्रांत रंधावा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसने तारा के जिस्म को किस करना शुरू कर दिया था। वहीं अमन को ये बात समझ में आ गई थी कि वो आसानी से गुफा के अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए उसने जल्दी से थोड़ा सा पानी जो उसके दादा महाराज ने दिया था उस गुफा की सुरक्षा कवच पर छिड़क दिया, और जैसे ही उसने पानी छिड़का अचानक वहां पर पृथ्वी पर कंपन सा हुआ। फिर उसने धीरे धीरे कदम रखा तो इस बार वो अंदर चला गया। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया उसने देखा कि राक्षस की माँ यानी पिछले जन्म वाले उस राजा की माँ बिल्कुल ठीक सामने खड़ी हुई थी और उसे देखकर जोरों से हंसने लगी थी। तूने आने में देर कर दी जिन महाराज, अमन तेरी बीवी को तो मेरा बेटा अब तक अपना बना चुका होगा, कहने लगी थी वो। उस राजा की माँ को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि विक्रांत ने तारा के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था। उसने सबसे पहले अपना एक कमरा तैयार किया था, उसे सजाया था, बिस्तर तैयार किया था, तारा को तैयार किया था, इस चक्कर में वो काफी समय गवा चुका था। तब अमन ने गुस्से से उसकी माँ की गर्दन पकड़कर मरोड़ना शुरू कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, वे इस तरह से नहीं मर सकती हैं। लेकिन अमन ने सोचा कि इन्हें यहाँ से गायब जरूर किया जा सकता है। ये सोचते हुए अमन ने जल्दी से जो पानी उसके दादा ने दिया था वो लेकर उनके मुंह पर मारा, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह से जलने लगा और धीरे धीरे उनका शरीर गायब होने लगा।
इसका मतलब साफ था कि जादुई पानी के पड़ते ही उनकी शक्तियाँ कुछ समय के लिए पूरी तरह से मिट जाएंगी, और जिसकी वजह से वे वहां से गायब भी हो सकती थीं। और ऐसा ही हुआ था। तब उसकी माँ को रास्ते से हटाने के बाद अमन जल्दी से आगे बढ़ने लगा था, और जल्दी ही उसे एहसास हो गया था कि उसकी प्यारी बीवी इस वक्त कहाँ है। और जैसे ही वो वहां गया उसने देखा कि विक्रांत रंधावा केवल नाम मात्र के कपड़ों के साथ तारा को फूलों से भरे हुए बिस्तर पर लिटाया हुआ था, और वो उसे बुरी तरह से उसके हाथों पर और गले पर किस कर रहा था। जैसे ही अमन ने ये देखा उसका खून खौलने लगा, उसने कसकर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से दहाड़ा, विक्रांत। विक्रांत रंधावा जो कि उस वक्त पूरी तरह से उत्तेजित हो चुका था और तारा के साथ रिश्ता बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, और जैसे ही उसने अमन को वहां पर देखा उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उस वक्त वो अपने और तारा के बीच में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि अब अमन वहां आ चुका था तो वो इस तरह से अमन के साथ तारा के साथ रिश्ता नहीं बना सकता था, और उसने जल्दी से आगे बढ़कर अमन के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया था। तब तक अमन ने जादुई शक्ति से जितने भी फूल बिस्तर पर मौजूद थे उन सब से तारा को पूरी तरह से ढक दिया था, जिससे तारा के चेहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही विक्रांत ने ये देखा उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, और उसने जल्दी से आगे बढ़कर जैसे ही अमन पर हाथ उठाया बदले में अमन ने विक्रांत के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। अमन के घूंसा मारते ही विक्रांत तुरंत जाकर जमीन पर गिर पड़ा था, और उसके अंदर से जो राक्षस का अंश था वो तुरंत बाहर निकल आया था, जो कि उस वक्त तारा को इतने करीब पाकर पूरी तरह से पागल हो चुका था और हर हाल में तारा को पाना चाहता था। लेकिन अमन के वहां जाने के कारण उसका प्लान पूरा होते होते रह गया था, और विक्रांत के शरीर की उस वक्त उसे काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो राक्षस के रूप में तारा के साथ शारीरिक रिश्ता नहीं बना सकता था, क्योंकि उसका जिस्म उस वक्त परीलोक में कैद था। जब तक उसका जिस्म परीलोक से आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो तारा के साथ राक्षस के रूप में रिश्ता नहीं बना सकता था। इसके लिए उसे विक्रांत के जिस्म की जरूरत थी, जिसका प्रयोग करके वो तारा के साथ रिश्ता बनाकर उसके पेट में पल रहे वंशज को खत्म करना चाहता था, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तारा को परीलोक ले जाकर अपने जिस्म को आज़ाद करना चाहता था। लेकिन अमन के वहां जाने पर उसे अपना सारा प्लान मिटता हुआ सा दिखाई देने लगा था, और वो गुस्से से अमन की ओर दहाड़ा। अब अमन को कुछ समझ में नहीं आया कि वो इतने बड़े राक्षस का इस तरह से मुकाबला कैसे करे, क्योंकि एक तो उसे उसके कंधे के पास काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था जहां पर उसे पिशाच ने काटा था, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ अपनी प्यारी और खूबसूरत बीवी तारा ही दिखाई दे रही थी। इसीलिए अमन को एक बार फिर दादा महाराज के दिए हुए पानी की याद आई थी, इसलिए उसने बोतल निकालकर उसे राक्षस के ऊपर छिड़क दिया। लेकिन उस राक्षस को हल्का सा ही उस पानी का असर हुआ था, उस पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। जैसे ही अमन ने ये देखा वो हैरान हो गया था, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसके पास एक और रास्ता नजर आने लगा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उस वक्त उसका मकसद सिर्फ तारा का जिस्म है, तो अगर वो तारा को ही पहले ठीक कर दे तो उसके बाद ये राक्षस अपने आप यहां से चला जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। ये सोचते हुए अमन जल्दी से पानी लेकर तारा की ओर बढ़ा, लेकिन वो राक्षस उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था। अब अमन को समझ नहीं आया कि राक्षस से बचकर तारा तक ये पानी कैसे पहुंचाए। तभी अचानक अमन ने पानी की बोतल को हवा में उछाल दिया था, जिससे जादुई पानी की सारी छींटे सीधा तारा परी के मुंह, पेट, कमर और शरीर के सारे हिस्से पर जा गिरी थी। जैसे ही जादुई पानी ने तारा परी को छुआ, तुरंत उसे होश आने लगा था। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी होश में आ चुका था। जैसे ही तारा उठी और उसने अपने आसपास देखा तो उसकी चीख निकल गई थी, क्योंकि इस वक्त वो काफी कम कपड़ों में फूलों से भरे हुए बिस्तर पर थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या होने वाला था। तारा ने जल्दी से अपने आसपास अच्छी तरह से देखा। जल्दी ही उसे विक्रांत रंधावा के साथ साथ अमन भी दिखाई दे गया। तारा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने देखा कि अमन की जान को खतरा है, तो इसीलिए तारा ने देरी ना करते हुए जल्दी से अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। क्या तारा अपना सच अमन के सामने आने से रोक पाएगी?